समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 का समय और समाचार पत्रिका कार्यक्रम परिक्रमा के आज के संस्करण में आपके स्वागत के साथ हम उपस्थित हैं। आज के सफर में आपके साथ हूं मैं, आप ही का अपना रवि कपूर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। नमस्कार अभिषेक।
हेलो रवि, हेलो, गुड आफ्टरनून।
आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार, चलेंगे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए और जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को कहा अलविदा।
Yes, hello and good afternoon listeners. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. I am Abhishek Mukhopadhyay and with me today is my co-host Ravi. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first.
Ji, bilkul.
Prime Minister Narendra Modi inaugurates crucial rail projects in Jammu and Kashmir, Odisha and Telangana, says development of railway is very important for achieving the resolve of a developed India.
Karnataka mein shishuon mein HMP virus ke 2 mamle samne aaye, kendra sthiti ki nigrani kar raha hai.
Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs pre-budget consultation with trade unions and other stakeholders in New Delhi.
Lok Sabha adhyaksh Om Birla ne panchayaton se anusuchit janajatiyon ki mahila pratinidhiyon ko sashakt banane के लिए पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया।
कोल्ड वेव कंडीशंस प्रिवेल अक्रॉस नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया, ट्रेन एंड फ्लाइट सर्विसेज अफेक्टेड इन मेनी सिटीज ड्यू टू फॉग।
और स्क्वैश में अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन के फाइनल में प्रवेश किया।
And now, Ravi, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Udhampur-Srinagar-Baramulla railway line.
Ji, bilkul.
And today we are talking about a truly groundbreaking development, one that promises to revolutionize connectivity in Jammu and Kashmir. We are talking about the Udhampur-Srinagar-Baramulla railway line link, or USBRL project. And as this ambitious project, crucial for connecting Jammu and Kashmir with the rest of the country, has entered its final stages.
हाल ही में भारतीय रेलवे ने कटरा बनिहाल खंड पर सफल परीक्षण किया, जो इस ऐतिहासिक परियोजना में एक अहम पड़ाव है। अब 7 और 8 जनवरी को रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अंतिम सुरक्षा निरीक्षण की तैयारी हो रही है। इन निरीक्षणों के बाद कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
Yes, Ravi, and this is not just about trains. This is about revolutionizing connectivity in a region known for its challenging terrain and strategic importance. And this project has been in the works for years and includes some truly groundbreaking feats of engineering.
बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक, और उदाहरण के लिए चिनाब ब्रिज को ही देख लीजिए। ये नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे आईफिल टावर से भी ऊंचा बनाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे पुल है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर और मुख्य स्पैन 467 मीटर का है। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिस पर जल्द ही ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी।
Yes, Ravi, and now let's take a quick look back at the journey of this project. Of the 272 kilometers of the Udhampur-Srinagar-Baramulla railway line, 161 kilometers have already been commissioned in phases. And in October 2009, the first phase, 118 kilometer stretch from the Kazigund to Baramulla was opened. And this was followed by the Banihal-Kazigund stretch in 2013 and the Udhampur-Katra section in 2014.
Bilkul, pichle saal February में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल संगलदान खंड का उद्घाटन किया था। इससे बिना रुकावट कनेक्टिविटी हासिल करने का सपना और भी करीब आ गया। ये प्रगति के छोटे छोटे कदमों का ही तो नतीजा है, जिसमें हर उपलब्धि अगली की नींव रखती गई।
Yes, so Ravi, what makes this project extraordinary isn't just the scale, but also the challenges overcome along the way.
बिल्कुल, और इस परियोजना में 38 सुरंगें बनाई गईं, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। इनमें से सुरंग T-49 अभिषेक देश की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। इसके साथ ही 927 पुल बनाए गए हैं, जिनकी कुल लंबाई 13 किलोमीटर से अधिक है। आप इससे काम की जटिलता का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और इसके अलावा भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का निर्माण भी एक बड़ी उपलब्धि है। आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये रेल मार्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित और आरामदायक बनाया गया है।
Absolutely, and by facilitating easier movement of people and goods, the rail line is expected to boost tourism, trade and overall economic development in Kashmir. And we will soon connect New Delhi to the Kashmir Valley. Imagine a seamless journey from the heart of India to the stunning landscapes of Kashmir. What a transformative experience that will be, isn't it, Ravi?
बिल्कुल बिल्कुल। कटरा बनिहाल खंड पर पिछले महीने 6 परीक्षण किए गए हैं और सभी के नतीजे उम्मीदों के मुताबिक रहे हैं। जैसे ही रेलवे सुरक्षा आयुक्त अपनी रिपोर्ट देंगे, कश्मीर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी का सपना पूरा होने के और करीब आ जाएगा।
एंड यू नो व्हाट रवि, दिस प्रोजेक्ट इजंट जस्ट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट। By linking remote and challenging terrains to the national network, the Udhampur-Srinagar-Baramulla railway line project is set to drive economic growth, create jobs and improve the quality of life for the people of Jammu and Kashmir. And the designation of the USBRL as a national project back in 2002 was a testament to its significance for the region and the nation as a whole.
बिल्कुल, और श्रोताओं, ये जश्न मनाने का वक्त है। भारतीय रेलवे ने इस सपने को हकीकत बनाने में शानदार समर्पण और नवाचार दिखाया। जैसे जैसे ये अंतिम चरण पूरा होता जा रहा है, हमें उन अनगिनत इंजीनियरों, मजदूरों और दूरदर्शियों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि में योगदान दिया है।
एंड नाउ रवि, वी विल टॉक अबाउट अ सेकंड सेक्शन इन अ डेट, सेकंड टॉपिक इन अ डेटलाइन सेक्शन, एंड दैट इज द ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस केसेस HMPV इन इंडिया एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स। सो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV इज अ वायरस दैट यूजुअली कॉजेस सिम्पटम्स to the common cold. It often causes upper respiratory infections, but it can sometimes cause lower respiratory infections like pneumonia, asthma, flare-ups, or make chronic obstructive pulmonary disease, COPD, worse. And HMPV infections are more common in the winter and early spring.
बिल्कुल ठीक है आपने। शोधकर्ताओं का अनुमान है अभिषेक के बच्चों में लगभग 10% से 12% श्वसन बीमारियां HMPV के कारण होती हैं। अधिकतर मामले हल्के होते हैं, लेकिन लगभग 5% से 16% बच्चे निचली श्वसन पथ की समस्या जैसे कि निमोनिया विकसित कर सकते हैं।
Yes, and amid the rising concerns of an outbreak of human metapneumovirus or HMPV in China, two cases have now been detected in Karnataka, India, and this is indeed a very alarming thing, Ravi. And this respiratory virus has drawn attention globally, and authorities in India are closely monitoring the situation. And here's what you need to know. Ravi will brief us with that.
बिल्कुल। कर्नाटक में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने दो मानव मेटापनी मोवा वायरस मामलों की पहचान की है। ये मामले बेंगलुरु की 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे से जुड़े हैं। सौभाग्य से दोनों बच्चे तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार दोनों बच्चों का कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास नहीं है, जो ये दर्शाता है कि ये वायरस स्थानीय स्तर पर फैल रहा है।
Yes, and the government is also keeping a close eye on the situation. It has activated all available surveillance channels to monitor respiratory illnesses including HMPV, and the ministry clarified that HMPV is not new to India and is already circulating globally. Respiratory illnesses linked to this virus have been reported in various countries.
ICMR और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार अभिषेक, देश में इन्फ्लुएंजा जैसे रोग या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। श्वसन रोग जनकों की नियमित निगरानी से इन मामलों का पता चला, जो भारत की तैयारियों और मजबूत निगरानी प्रणाली को दर्शाता है।
Yanravi, while India reports isolated cases, the situation in China is more alarming with a significant rise in HMPV infections, and the World Health Organization has been providing regular updates ensuring global awareness and preparedness.
और अभिषेक, इन घटनाक्रमों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को आश्वासन दिया है कि भारत किसी भी संभावित वृद्धि को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल के राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी अभ्यासों से यह साबित हुआ है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां आवश्यक हस्तक्षेप के लिए तैयार हैं।
And now let's turn our focus closer home, that is to our very own city of Delhi. And meanwhile, in the capital city of Delhi, health authorities have issued an advisory to ensure readiness for HMPV and other respiratory viruses. Hospitals have been instructed to report influenza-like illness and severe acute respiratory infection cases through the Integrated Health Information Platform, IHIP portal. And additionally, strict isolation protocols have been mandated for suspected HMPV cases. And universal precautions such as the use of personal protective equipment have been reinforced laws to safeguard healthcare workers and patients.
दिल्ली की स्वास्थ्य सलाह में भी ये जोर दिया गया है अभिषेक कि आवश्यक दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल, एंटीहिस्टामिन, ब्रोंकोडायलेटर और खांसी की सिरप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों. अस्पतालों को गंभीर श्वसन स्थितियों के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. ये उपाय किसी भी संभावित वृद्धि के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं.
Yes, and the Minister of Health has reiterated the importance of early detection, timely reporting and prompt isolation in containing the spread of HMPV. Awareness campaigns have also been planned to educate the public on symptoms, preventive measures and when to seek medical attention.
और अभिषेक, हालांकि मानव मेटान्यूमो वायरस भारत और दुनिया के लिए नया नहीं है, लेकिन चीन में हाल ही में इसके मामलों में वृद्धि ने निगरानी और तैयारी को बढ़ा दिया है. हमारे स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हैं लेकिन आशावादी भी हैं. राज्य और राष्ट्रीय अधिकारियों की तेज प्रतिक्रिया भारत के मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और उभरती स्वास्थ्य चुनौतियों को संभालने की तैयारी को दर्शाती हैं.
Yes, and so to wind up our discussion today, we'd like to inform our listeners that stay informed, follow public health advisories and take necessary precautions to protect yourselves and your loved ones.
और अब समय हो गया है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और उनसे ये जानने का कि उनके पास आज क्या विशेष है. तो देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और अपने पैरों पर खड़े रहकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं और दूसरी महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं. तो ऐसी ही एक महिला गुजरात के डांग जिले में भी हैं. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट.
गैराज और मैकेनिक का नाम सुनते ही हमारे जहन में हाथ में उपकरण लिए हुए एक पुरुष की छवि ही सामने आती है. पर आज हम एक ऐसी महिला की बात करेंगे जो अपने परिवार की मदद के लिए आत्मनिर्भर बनी है, वो भी मैकेनिक बनकर. तेजस्वी बहन नामक यह महिला मैकेनिक गुजरात के डांग जिले के जामनवीर गांव से आती है. यहां वह द्विचक्री वाहन को अपनी सूझबूझ से ठीक करके अनेक वाहन चालकों को मदद करती है. किसी भी प्रकार की शर्म को छोड़कर तेजस्वी बहन ने गांव में ही अपना खुद का गैराज खोल लिया है. शुरुआत में उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आज उनका काम देखकर हर कोई अचंभित हो जाता है. तेजस्वी बहन ने आहवा तालुका में ITI का कोर्स करने के बाद यह साहस किया है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में प्रथम महिला मैकेनिक बनकर वे अपने जिले की आत्मनिर्भर महिला बनकर अन्य महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है. परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं प्रवेश अड़ियचा.
And Nagaland para athlete Hokato Hotezi Sema will be conferred the Arjuna Award for Outstanding Performance in Sports and Games 2024. He was among the 32 sportspersons selected for the Arjuna Award, the second highest sporting honor in India. And the announcement was made by the Minister of Youth Affairs and Sports.
Hokato Hotoshi Sema had made history when he won the bronze medals in shot put at the Paris Paralympics 2024, becoming the first athlete from Nagaland to win a Paralympic medal for India. We spoke to Mr. Sema where he said his ultimate dream to get the Arjuna Award has come true.
जो आज मैं Arjuna Award मिलने जा रहा है, इसके पीछे जो है बहुत सारा हाथ है. इसमें खास करके इंडियन आर्मी और PCI का हाथ है मेरे को ये दिलाने के लिए. इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं 2001 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था और 2002 में मैंने यूनिट पोस्टिंग किया है. उस समय ऑपरेशन के दौरान जो है एक माइंड ब्लास्ट होने के कारण मेरा लेफ्ट लेग जो है एम्पुटेशन करना पड़ा. उसके बाद काफी साल मैंने अपना यूनिट में रहा है. उसके बाद 2016 में मैंने गेम स्टार्ट किया है और 2017 में फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप खेला है. उसको काफी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स खेला है मैंने और काफी मेडल भी जीता है. और मैंने जब मेरा ये गेम स्टार्ट हुआ था तो उसी में मैं यही सोचा था कि मेरे को जैसे भी अर्जुन अवार्ड चाहिए बोल के मैं जैसे भी मैं अर्जुन अवार्ड लेके छोड़ूंगा बोल के मेरा टारगेट वही था, एम था. और मेरा काफी जो है मेरा लाइफ जर्नी में जो है उतार चढ़ाव आया है. 2023 में मैंने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और पिछले साल 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल मिला है.
Hokato Hotoshi Sema इज ओनली द सेकंड पर्सन फ्रॉम नागालैंड टू बी कंफर्ड Arjuna Award after archer Chakravulu Soro in 2013. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
और अभिषेक, अब चलते हैं जयपुर, जहां भारतीय सिनेमा और रंगमंच के मशहूर कलाकार इरफान खान को समर्पित इरफान थिएटर फेस्टिवल का आज से जयपुर में आयोजन किया जा रहा है.
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन चलने वाले इस फेस्टिवल के जरिए इरफान की कला और उनकी यादों को ताजा किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान 3 नाटकों द वर्डिक्ट, किस्से किनारों के और महारथी का मंचन भी होगा। इसके साथ ही फिल्म स्क्रीनिंग, पैनल चर्चा और टॉक शो भी रखे गए हैं। कार्यक्रम में इरफान खान की पत्नी और लेखिका सुतापा सिकदर और प्रसिद्ध लेखक निर्देशक आकर्ष खुराना भी शामिल हो रहे हैं। सिने प्रेमियों और इरफान के प्रशंसकों के लिए उनकी कलात्मक विरासत से जुड़ने का ये बेहतरीन अवसर है। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी के साथ सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
In business news, benchmark domestic equity indices today ended sharply lower with losses of over 1.5% amid intense selling pressure across all sectors. The 30-share index of the Bombay Stock Exchange Sensex tumbled 1,258 points to close at 77,965. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 shed 389 points to settle at 23,616.
और अब कुछ बातें जो हैं वो खेल की जानकारी। खेल की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आयरलैंड के साथ भारत की आगामी 3 मैचों की महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए 15 सदस्यों की टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और शीर्ष तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को इस श्रृंखला में आराम दिया गया है। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में स्मृति मंधाना भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। दीप्ति शर्मा उप कप्तान होंगी। श्रृंखला का पहला मैच 10 जनवरी को, दूसरा 12 जनवरी को और अंतिम मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। सभी मैच राजकोट में खेले जाएंगे। और अब समय है उन व्यक्तित्वों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिन। इस क्रम में सबसे पहले हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
We remember nationalist, the father of Hindi literature and Hindi theatre, Bharatendu Harishchandra, who died on 6th of January 1885.
Angreji padhi ke jadpi sabgun hot praveen, tainij bhasha gyan bin rahat heen ke heen.
Bharatendu was barely 7 years old when the First War of Independence of 1857 took place, which left a deep impression on young Harishchandra.
Bharatendu was a precursor to the Hindi Renaissance. He was the man behind what is known as the Hindi vernacular nationalism and the driving force behind the mass movement that culminated in the popular slogan Hindi, Hindu, Hindustan.
Unnati puri hai tabhi jab ghar unnati hoye, nij sharir unnati kiye, rahat mood sab koye.
His journals were vociferous in their critique of the oppressive policies of the British government.
Harishchandra represented the agonies of the people, the country's poverty, dependency, inhuman exploitation, the unrest of the middle class, and the urge for the progress of the country. His play, Andher Nagri Chaupat Raja, Takeser Bhaji Takeser Khaja, is a satire on the irrational and autocratic British government system.
Bharatendu used new media, especially publications, to shape public opinion. The Ministry of Information and Broadcasting of India has been giving the Bharatendu Harishchandra Award since 1983 to promote original writings in Hindi mass communication.
We also remember playwright Vijay Dhundupanta Tendulkar, who was born on the 6th of January 1928 in Kolhapur, Maharashtra. He participated in the 1942 Indian Freedom Movement at the age of 14 years, leaving his studies. He is considered as a leading fighter for cultural freedom through his plays, movie and television screenplays and journalism, primarily in Marathi language. Tendulkar grew up watching plays, and at age 11, he wrote, directed and acted in his first play. He is best known for his plays Shantata, Kolta Chalu Ahe, Ghashiram Kotwal and Sakharam Binder. Thematically, his plays have ranged from the alienation of the modern individual to contemporary politics, from socio-individual tensions to the complexities of human character, from the exploration of man-woman relationships to reinterpretations of historical episodes.
Many of his plays derived inspiration from real-life incidents or social upheavals, which provides clear light on harsh realities. He's the recipient of many prestigious awards.
Yes, Ravi, and also Louis Braille passed away on this day in 1852. He was a French educator and the inventor of a reading and writing system named after him, Braille, intended for use by visually impaired people. His system is used worldwide and remains virtually unchanged to this day.
Ji, aur ab baat karte hain Karnataka sangeet ke mahaan gyata aur bhakti marg ke bahut hi prasiddh kavi Tyagaraj ke bare mein, jinka janm hua 4 mai 1767 Thanjavur, Tamil Nadu mein, aur nidhan hua inka 6 janvari 1847 mein. Tyagaraj ne भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी. उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते थे और आज भी गाए जाते हैं. त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया था. उनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है. हालांकि पंच रत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है. त्यागराज के जीवन का कोई भी पल श्री राम से जुड़ा नहीं था. वे अपनी कृतियों में भगवान राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे. त्यागराज द्वारा रचित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं निधि चल सुखम, प्रहलाद भक्ति विजय, नौका चरितम, पंच रत्न और दिव्य नाम कीर्तन आदि.
प्रतुल चंद्र सरकार और पीसी सरकार पास्ड अवे इन दिस डे 1971. ही वाज एन इंडियन मैजिशियन. ही वाज एन इंटरनेशनली एक्टिव मैजिशियन थ्रू आउट द 1950s एंड 60s, परफॉर्मिंग हिज इंद्रजाल शो बिफोर लाइव ऑडियंसेस एंड ऑन टेलीविजन. सरकार डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 57 इन आशिकावा, Hokkaido, Japan, on 6th January 1971, where he was performing. P.C. Sarkar is known also as P.C. Sarkar Senior, as his son P.C. Sarkar Junior also performs under the same name, and he is renowned as the father of modern Indian magic.
Ji, aur jab hum bachi hua karte the to hum inke shows jo hain wo dekha karte the.
Absolutely.
Ab baat karte hain aur jankari dete hain apne shrotaon ko aadhunik Hindi sahitya ke pitamah kahe jane wale Bharatendu Harishchandra ke bare mein, जिनका जन्म हुआ 9 सितंबर सन 1850 काशी में और आपने इस संसार से विदा ली 6 जनवरी सन 1885 को. भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का अभिभाव हुआ, देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था. अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी चरमोत्कर्ष पर थी और शासन तंत्र से संबंधित संपूर्ण कार्य अंग्रेजी में ही होता था. अंग्रेजी हुकूमत में पद की लालसा की भावना बहुत ही ज्यादा प्रबल थी और भारतीय लोगों में विदेशी सभ्यता के प्रति आकर्षण भी था. ब्रिटिश आधिपत्य में लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना गौरव की बात समझते थे. हिंदी के प्रति लोगों में आकर्षण कम था क्योंकि अंग्रेजी की नीति से हमारे साहित्य पर बुरा असर पड़ रहा था. हम गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर किए गए थे. हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. ऐसे वातावरण में अभिषेक, जब बाबू हरिश्चंद्र अवतरित हुए तो उन्होंने सबसे पहले समाज और देश की दशा पर विचार किया और फिर अपनी लेखनी के माध्यम से विदेशी हुकूमत का पर्दाफाश किया. भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित मुख्य रचनाओं में शामिल हैं 1871 की प्रेम मालिका, 1875 की प्रेम माधुरी, 1877 की प्रेम तरंग और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कृष्ण चक्र आदि.
Yes, and Dilip Kumar Roy passed away on this day in 1980. He was an Indian musician, singer, musicologist, novelist, poet, essayist, and yogi. He was the son of Dwijendralal Ray or Roy. And in 1965, the Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance, and Drama, awarded him its highest honor for lifetime achievement, the Sangeet Natak Academy Fellowship.
और अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं. हिंदी फिल्मों के उन प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक रहे ओम पुरी साहब के बारे में, जिनका असली नाम था ओम राजेश पुरी, जो अपनी अभिनय क्षमता से किसी भी किरदार को पर्दे पर जीवंत करने में बहुत ही ज्यादा सक्षम थे. वे भारतीय सिनेमा के एक कालजयी अभिनेता थे. उनके अभिनय का हर अंदाज दर्शकों को प्रभावित करता था, आज भी करता है. रुपहले पर्दे पर जब ओमपुरी का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखता है तो दर्शकों को भी अपनी खुशियों का एहसास होता है और उनके दर्द में दर्शक भी दुखी होते हैं. हमारे पास उनका एक डायलॉग है.
छोड़िए मिस्टर राय, ये दावा आपके मान के लिए कहीं और हानिकारक न बन जाए. फिलहाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए. जान है तो दावा भी कर सकते हैं. अब सोचना यह है मिस्टर राय, कि हम आपको किस रास्ते किस रूट से ले जा रहे हैं इसकी जानकारी मुझे आपको और आपके आदमियों को थी, जबकि अजय पहले से ही वहां हमारा आपका इंतजार कर रहा था। पूरे शहर में दहशत फैली है और ऊपर से आपका ये आर्टिकल। अजय मेहरा एक खूनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शहर में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार है। ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया।
Yes, and Rowan Sebastian Atkinson was born on this day in 1955. He's an English actor, comedian and writer. He played the title roles in the sitcoms Blackadder from 1983 to 1989 and Mr. Bean from 1990 to 1995 and in the film series Johnny English from 2003 to present. Atkinson first came to prominence on the BBC sketch comedy show Not the 9 O'Clock News from 1979 to 1982, receiving the 1981 British Academy Television Award for the Best Entertainment Performance.
और अभिषेक अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं, भारतीय फिल्मों के बहुत ही सुप्रसिद्ध संगीतकार और बाल अभिनेता रहे जयदेव के बारे में, जिनका जन्म हुआ 3 अगस्त 1919 लुधियाना में और इन्होंने इस दुनिया से विदा ली 6 जनवरी 1987 में। इन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जयदेव नई प्रतिभाओं को मौका देने में हमेशा आगे रहे अभिषेक, जैसे कि दिलजाज कौर, भूपेंद्र, रूना लैला, पिनाज मसानी, सुरेश वाडेकर आदि नवोदित गायकों को उन्होंने प्रोत्साहित किया और अपनी फिल्मों में गायन के अनेक मौके दिए। पुरस्कारों और सम्मानों की अगर बात की जाए तो जयदेव को हिंदी फिल्म इतिहास में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुर सिंगर पुरस्कार से 4 बार नवाजा गया और लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। आइए सुनते हैं इनके द्वारा रचित कुछ हिंदी संगीत फिल्म की रचनाएं। And Kapil Dev Nikhanj was born on this day in 1959. He is an Indian former cricket team captain. He is regarded as one of the greatest all-rounders in the history of cricket. He was a fast medium bowler and a hard-hitting middle-order batsman. Dev is the only player in the history of cricket to have taken more than 400 wickets, 434 wickets actually, and scored more than 5,000 runs in Test cricket. Dev captained the Indian cricket team that won the 1983 Cricket World Cup, becoming the first Indian captain to win the Cricket World Cup. He is still the youngest captain at the age of 24 to win the World Cup for any team. और अभिषेक, मुझे कपिल देव का एक बहुत ही इंटरव्यू याद है, बहुत ही पसंदीदा, जिसमें उन्होंने कहा था कि खिलाड़ी कहते हैं कि भाई प्रेशर है, तो वो कहते हैं अरे भाई प्रेशर क्या होता है, अगर प्रेशर है तो फिर मत खेलो।
Absolutely, that was the greatest of the man, that was Kapil Dev Nikhanj. And moving on, Allah Rakha Rehman, born as Dilip Kumar, was born on this day in 1967, also known by his initialism ARR. He is an Indian music composer, record producer, singer, songwriter, musician, multi-instrumentalist, philanthropist, known for his works in Indian cinema, predominantly in Tamil and Hindi films, with occasional forays in international cinema. He is the recipient of 6 National Film Awards, 2 Academy Awards, 2 Grammy Awards, a BAFTA Award, a Golden Globe Award, and 6 Tamil Nadu State Film Awards, 15 Filmfare Awards, and 18 Filmfare Awards South. In 2010, the Government of India conferred him with the Padma Bhushan, the nation's 3rd highest civilian award. Let's listen in to his hit song, Jai Ho, from the film's Slumdog Millionaire.
नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने भूखों से उड़ा।
और चलते चलते हल्की सी जानकारी भरत व्यास साहब के बारे में, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार रहे और मूल रूप से वे चूरू के थे और बचपन से ही इनमें कवि बनने की बहुत ही अच्छी प्रतिभा थी। सुन लेते हैं इनका भी लिखा हुआ गीत।
जिससे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी,
परेशान।
तो अभिषेक का समय हो चला है श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए रवि कपूर और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की।
नमस्कार।
नमस्कार।